أجرامك جرام من دهبشة جرام من دنفراتيا سطور من تنجينا تسمي في غربين بنشا قلب تربهشة كرباة سندھ بھائیوچا پتیتانم پاون بائیشنو ایتھرو نمو مہاب جنیائی کرشنا پریم پراجتی کرشنا یا کرشنا چیتن نمنے گورتی گروہ گورہ چندرائی राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय परभक्ताय भक्त्याविहीना परादलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी स्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणं अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं पत्तम्बरश्च श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिरसभ्यामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलगुरुं ध्यायेन्द्रम् तवै वास्मि तवै वास्मि तया विना इति विजय राधे जतैव कृष्णो विषभानुपुत्र दानं गृहीतुं कलन्ते श्रुते सिंहायत्र महत्ततः से गोवर्धनो मे दिशताम् परमदमदन लीला कंदरे कंदरे के रचे अति नवजुलो चंदम नमनम इतकलकला तबलग नकस सब्रियम निज निकट निवासम देहि गोवर्धन किसी भजन रहस्य प्रथम ज्ञान साधन अथ भजन का क्रम शिक्षास्त्र का पहला शीर्षोदर परमाजन भव महादावाप श्रेय कैरव चंद्रिका विचरणम विद्या जीवन आनन्दाम्बोधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं जयते श्रीकृष्ण बहुत बार इसका अर्थ बतलाया गया है, संक्षेप में बतला रहे हैं। चित्रुचि दर्पण शोधित करने वाले संसार महादावानों को संपूर्ण रूप से विभाग दिया है। जीवों की कल्याण रूपी पूर्ण को विकसित करने के लिए भाव रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाले विद्या रूपी वधु के जीवन से आनंद समुद्र की निरंतर वर्धित करने वाले पद पर पश्चिम अमृत का रसास्वादन कराने वाले बाहर भीतर से देह हृदय आत्मा स्वभाव सबको सर्वस्वभाव से निर्मल और सुशीतल करने वाले श्रीकृष्ण संकीर्तन विशेष रूप से जय विश्व हूं। भगवान का नाम करने से चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, किंतु कैसे? पहले साधु संघ, साधु संघ के बाद में गुरु पदाक्षर, उनसे मंत्र ग्रहण, उनकी विषमपूर्वक सेवा, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, संबंध ज्ञान उदित हो। संबंध ज्ञान के होने पर भजन करते करते और यह अनर्थ दूर हो जाने पर तब भगवान का जो नाम होता है उससे चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है। अभी हम लोगों का चित्त मार्जित नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, कुछ कुछ अंशिक रूप में हो रहा, किंतु जब जैसे हमने प्रक्रिया कहा है उस प्रक्रिया से यदि भजन करेंगे गुरु पदार्थ से संबंध ज्ञान उदित होकर अनर्थ रहित होकर जब हरिनाम करेंगे वैष्णव के अनुगत्य में तब तो उसे चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। सारी आकांक्षाओं का दूर होना, सारी आसक्तियों का दूर होना ये चित्त का ही निर्मलता है। यदि आसक्ति दूर हो गई और किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, वर्ल्डली डिजायर नहीं है, तो फिर तो काम बन गया। और ये यदि नहीं हुआ तो फिर चित्त रूपी दर्पण नहीं मार्जित हो। आसक्ति का दूर होना, सांसारिक आसक्तियों का दूर होना ये चित्त का मार्जन है। जिस प्रकार से एक अलमारी में कांच का दरवाजा लगाया गया, दरवाजा बंद है, लॉक है उसकी, उसमें कौन सी पुस्तक है ये बाहर से देखा जा रहा है, किंतु आप किताब को स्पर्श नहीं कर सकते। उसी रूप में चित्त रूपी ये दर्पण मार्जित होने पर हमारा स्वरूप क्या है ये कभी कभी प्रतीत होगा, किंतु उसके ऊपर अभी सूक्ष्म महत्तत्व का या चित्त का पर्दा पड़ा हुआ है। बोतल के अंदर में लघु है, मधुमक्खी देख रही है किंतु उसे चाट नहीं सकती, यह चित्त रूपी दर्पण। भीतर से हमें मालूम हो रहा है किंतु अभी स्पर्श नहीं कर सकते। संसार की सारी दुख, सारे दुख हैं और ताप हैं दूर हो गए। बंधु बांधवों का दुख, अपना दुख, आपको कुछ नहीं हो रहा। यदि लड़का मर गया कितना दुख। अभी कल हम लोग गए थे बीज में, एक नवविवाहित लड़की घर में आई और कुछ दिनों के बाद उसको एक बेटा हुआ। जब बेटा करीब करीब 2 वर्ष का हुआ तो उसकी मैया असाध घरों से मर गई। अब वो लड़का दिन रात सोता नहीं, मैया मैया का रख के रोता है और उसके घर वाले सारे रोते हैं। उस लड़के को हमारे पास में ले आया, आप कोई गंदा तबीज दे दीजिए, बच्चा रोने। अब हमको देख करके भी रुलाई आने लगी उससे, जब वो कहने लगा जो मैया मैया रोने लग गया। तो हमारा भी चित्त दर्द, मैंने कहा जी इस बच्चे को ले जाओ, गंदा बीज हम पीछे। उसकी मैया तो मर गई, घर वालों से संबंध 1 वर्ष का, किंतु सभी लोग रो रहे हैं। इसलिए ये सब जितने प्रकार के ताप हैं ये सब दूर हो जाते हैं। शारीरिक दुख, दैहिक मानसिक इत्यादि सारे दुख और आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैहिक ये सारे दुख दूर हो जाते हैं। दूसरा, तीसरा, श्रेय चंद्रिका विचरण द्वंद्व का विकरणम। इस प्रकार से संबंध ज्ञान से ये कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, कुछ कुछ अब नमा भास होने लगा, अभी शुद्ध नाम नहीं आया, तो भी धीरे 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 श्रेयस है वो संबंध भाव। जिस प्रकार रात में चंद्र की शुभ्र ज्योत्सना से जो अमृत निकलता है उसे कुमुदिनी दीक्षित हो जाती है, उस चंद्रमा की किरणों में शीतल और स्निग्ध किरणों में अमृतमयी कुछ ऐसी शक्ति है जो कुमुदिनी खिल जाती है। वैसे हमारे जितने कल्याण हैं ये कुमुदिनी के स्वरूप है। नाम करने से वो नाम की शीतल चंद्र स्निग्ध जब उसके ऊपर में पड़ती है, जी साधक के ऊपर में, उसके साधु संग अनायासी होने लगता है, फिर वो श्रवण होने लगता है, कीर्तन होने लगता है और अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और तत्व ज्ञान भी होने लग जाता है। सबसे अधिक साधु संग उच्च कोटि का अपने से ये उसको अनायास ही प्राप्त होगा। ये तीसरा है। चौथा विद्यावद जीवनम। दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक विद्या एक अविद्या। कृष्ण को जान लेना ही ये विद्या है और जितनी विद्याएं हैं संसार में लिखने पढ़ने इधर उधर यहां तक कि वेदों का पढ़ना भी यह विद्या के अंतर्गत ही आता है। यदि कृष्ण नाम वो कर लिया तो सारे वेदों का पठन का फल उसको मिल गया। इसलिए विद्या है कृष्ण की को जानना, यह राधिका जी की शक्ति है, राधिका जी की कृपा से ही ऐसा होता है। तो विद्याओं की सबकी जननी कौन है, श्रीमती राधिका। उसके बधु, उसके बर, उसके प्राण बल्लभ कौन है, ये नाम, क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान का नाम करने से सारी विद्याओं की मूल विद्या भक्ति विद्या प्रेम भक्ति विद्या भी अपने आप आ जाती है। वही कृष्ण के राधा जी के प्राण बल्लभ है, ऐसा विश्वास रख करके हरि नाम करो। कलयुग में जितने सारे भजन करते हो जितने प्रकार के, नाम को छोड़ करके फिर सिद्धि नहीं होगी। कलयुग में नाम प्रधान है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐ व केवल कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति, और कोई दूसरी गति नहीं है। और युगों में तपस्या से, आराधना से, ध्यान से, अर्चन से, पूजन से जो कुछ लाभ होता है वो सब कुछ भगवान के नाम से प्राप्त। और कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। महामंत्र कहते हैं, ये उपनिषदों में है, समस्त शास्त्रों में है, पुराणों में है, आगम में है, निगम में है ये, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने उससे उन्होंने मत करके निकाला और लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, किंतु चैतन्य महाप्रभु कलयुग में उस नाम को उपनिषद से और ब्रह्मांड पुराण इत्यादि से उसकी महिमा बाहर की। हमने छोटे से हरिनाम नामक पुस्तक में हमने उस शास्त्रों से जहां से मिला है उसको लेकर के प्रतिपादन करके उसको निकाला है, आप लोग उसे पढ़ेंगे। विद्यावधि जीवनम आनंदाम्बोधि वर्धनम। जब नाम करेंगे तो उसके एक एक युगल में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, ये आठ युगल हैं। पहला हरे में या कृष्ण के चित्त को विहरण करने वाली राधिका का नाम हरा है, हरा से हरे, इसलिए हरे कृष्ण से राधा से उसी तरह से सब मिले जाओ। यहाँ पर राम कहने से दूसरे आराध्य नहीं, कृष्ण ही राम है। कौन? राधा रमन, कृष्ण को ही यहाँ पर राम कहा गया, नहीं तो दो उपास्य हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस मंत्र में दासरथी राम का उल्लेख नहीं है, कुछ लोग समझते हैं किंतु है नहीं, उनके लिए तो उनका अपना मंत्र है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। इसलिए एकांतिक भक्तों के लिए ये राम जो है राधा रमन कृष्ण का ही नाम यहाँ पर राम है। फिर आनंदाम्बोधि कृष्ण की लीलाओं की हृदय में स्फूर्ति होती है, उसका शुद्ध चित्त देह प्रकटित हो जाता है, जिसको वो कौन देह कहते हैं, सिद्ध देह है, उसको देह कहते हैं, आत्मा का वो शरीर, जैसे ये फूल शरीर है ऐसे ही आत्मा का शुद्ध सिद्ध देह है। इसमें जैसे आंखें, सिर, इंद्रियां, कान, नाक का बड़े सुंदर रूप से संनिविष्ट है, जैसे कृष्ण का चिन्मय शरीर है सच्चिदानंद, ऐसे जीवात्मा का भी ऐसे ही शरीर है। जब ये माया दूर हो जाएगी अपने आप वो प्रकटित हो जाता है, कल्पना करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई कहते हैं कि भजन करते 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 दीक्षा के समय में यह शरीर ही चिन्मय हो जाता है। शरीर चिन्मय होने की जरूरत क्या है? नारद ने अपना शरीर छोड़ दिया, चिन्मय शरीर प्रकट हुआ। जब आत्मा का अपना शरीर ही है तो ये शरीर जो चिन्मय हो जाए इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिसका जैसा शरीर है भजन के द्वारा प्रकटित होगा और पद पद पर उसे आनंद की उपलब्धि होगी, फिर से नाम को छोड़ नहीं सकता। सर्वात्म स्नपनम, वो इस प्रकार से आनंद रूपी समुद्र में डूब जाता है। माने क्या? शरीर को छोड़ करके शुद्ध शरीर से भगवान राधा कृष्ण की वृंदावन में भजन करते करते उसमें आनंद में डूब जाता है, फिर माया में आने की उसकी जरूरत नहीं। यह है सब भजन का क्रम। समथिंग नॉट अंडरस्टूड वाई स्पोक इन हिंदी रामचंद्र है not so detailed. I have told so many times, so I think that all others understand.
And then we study from the Torah. विश्वभेद सेवा है. इन द प्रोसेस आवर सन मानते डिजायर इट आर अदर दे डिजायर गेटिंग रिमूव एंड वी रियलाइज आवर रिलेशनशिप विद गुरु विद कृष्णा. And in such circumstances, this Harinam, when we continue to recite and chant this Harinam, it gives the maximum effect, cleansing effect on our heart. Yes, our heart is not getting clean. If we don't adopt this process and then chant this Harinam, its effect is not so good. Something takes place, but the cleaning process is not so good. Therefore, we have to come in this process. The important thing in this regard is to understand that we have to remove our unwanted desires. So many desires, so many left, this thing has to go. If they remain in our heart, our attachment is in our heart, then we cannot get to result. And moreover, that we remove our other desires and attachment of the material things, then we should understand that we will get fast results. So this cleaning process takes place, what happens? Gurudev is giving a very good example in this regard. Just as we clean a glass, the water, suppose there is an aggregate, big door is of glass, that in glass we can see the next, the thing of the next side. So aggregate is locked, and there are books in that aggregate. And aggregate glass is not clean, so we were unable to see what was those books inside it. But now, somehow or other, we have cleaned that glass. We can see those books, but mind it, we cannot touch them, we cannot go in them. We can just see them. So when this cleansing process takes place in our heart, at that time, we can see, but we cannot touch. What we can see? We can see that transcendental abode, transcendental thing, but we cannot touch it. In this stage, when we reach at this stage, so many things take place. What is that what they are telling? That our three-star abode, we have got so many miseries and so many pains and pangs in our heart. Pertaining to this material world, our relatives, our intestines, these disturbances go away. Gurudev was saying that yesterday we went to a house in tea. Here, last year, one lady, she was newly married, bridegroom of that house. She gave birth to a child. And when that child became 2 years old, her mother died because of the problem. Now this 2 years old child is crying for her mother, his mother. They brought this child to Gurudev. Please pacify him. Give him some miraculous service, serious mantra, so that he should be verified. Gurudev said that when he came, then he started again crying, "Oh my Maya, oh mother, oh mother." So everyone who was present there, I said, everyone starts crying. This is a worldly pain. When we chant our heart with Harina and our heart cleanses to this pain, these type of problems go away. Then the next stage comes. What is that? Shriya Gyanam Chandika Vigranam. When we are reciting this name, Harina, and it comes to the stage of Nama Bhava, it is still not pure love, it is at the age of Navabhad that what happens? That we get so many beneficial effects, so many pleasing effects. Our heart will be saying that just as a poor man rays of good, it grows with Prabodhani. Prabodhani is that power. And with the light of good, it blossoms. It blossoms. So our sense light of, when the rays of Harinam comes to us, so our so many happiness blossoms. Bhagavad Guruji is saying that we come to know what is Satsumya. We attain renunciation and we can certainly do salutation by the effect of the Harinam. These are all auspicious things which are taking place in our life. And then we come to the state of Vidya, Manu, Jivanam.
नवाभास अभी तक का भी नवाभास ही है. जब तक कि शुद्ध स्वरूप नहीं होगा, संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये नवाभास से ही संसार दूर हो जाता है, ताप दूर हो जाता है. उसमें शुद्ध नाम की जरूरत नहीं होती. जब शुद्ध देह जब उसका प्रकटित होगा, विद्या बुद्धि जीवन होगा, तब होगा. नानी जोके अवर हार्ट इज नॉट प्योर एंड इट्स गिव्स सो मनी अनुकूल परिस्थिति और सब संबंध ज्ञान और सहज ही में साधन होने लग जाएगा. जितने प्रकार के हमारे कल्याण हैं वो सब उदित होगा, जो कि हमारे भगवत भजन के अनुकूल है. ये होगा और जब विद्यापति जीवन हो जाएगा, तब हमारा स्वरूप प्राप्त होने पर संबंध ज्ञान के साथ भी वो नाम होगा. अब ये शुद्ध सब तब आनंदाम बुद्धिवत उस शुद्ध नाम से.
The some Buddha Sattva is coming. This
way.
This stage is not Namabhas.
After that, Vidya Bodhi Jivan. Up till now, there is something Namabhas. And Namabhas is sufficient for Ketu Darpan Marjanam Bhav Mahadavadi Nirvapanam Sayahakaram Chandra. Up to this. When Vidya Bodhi Jivan will come, then fourth slope of it will come. And after that Shuddha and Pure Nam. And then Ananda Bodhi.
So this is Ananda. We pertain to the state of playing Adam Chandra with us.
But Sambandha Gyan is there. Hmm? Sambandha Gyan is there. Yeah. What is Sambandha Gyan? Sambandha Gyan kis ko kahte hai? Ek 23 varsh ke baad mein, 24 varsh ke baad mein, 28 varsh ke baad mein, ek anjaan ladki ke saath mein shaadi hui. Jab tak shaadi nahi hua tha, sambandh nahi tha dono mein. माता पिता और पुरोहित ने संबंध दे दिया. ये माता पिता और गुरु, ये गुरु है पुरोहित, संबंध दिया. जब उनकी शादी हो गई, शादी होते ही परस्पर की ऐसी आसक्ति हो गई, यदि वो लड़की बीमार पड़ गई तो क्या होगा? उसके लिए कितने करोड़ों रुपये उठा सकता है? यदि है
घर भी
बेच देगा उस लड़की के लिए. मैया के लिए इतना हो सकता है या न करे, किंतु स्त्री के लिए करेगा. इसे ये संबंध है, गांव वालों से संबंध है, उनके लिए पूजा त्योहार त्योहारों में दीपावली इत्यादि में उसको 200-400 रुपये 1000 रुपये दे देगा, कोई और दूसरा काम होगा तो उसमें 1,00,000 रुपया दे देगा, किंतु अपनी स्त्री की चिकित्सा के लिए जैसे वो प्राण छोड़ करके अपनी सारी संपत्ति को बेच करके भी वो लगा देगा, ऐसा नहीं करेगा। ऐसे ही जब गुरु जीवों के साथ में भगवान का संबंध करा देते हैं और एक संबंध निश्चित हो जाता है तो साधक समझता है कि कृष्ण मेरे हैं या मैं उनका हूं, ये संबंध हमारे सखा हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे प्रियतम प्राण हैं, ये संबंध करा देते हैं। अभी संबंध तो हुआ नहीं है किंतु अंततः ये वागदान हो गया, वागदान मैंने अभी लड़का और लड़की से भेंट नहीं है और उसके पिता माता जी लड़के को देख करके बड़े प्रसन्न हैं, ये लड़का बड़ा सुंदर सुपात्र है हमारी लड़की के योग्य, उन्होंने एक सोने का जंजीर या एक घड़ी या कुछ उस बेटे को लड़के को दे दिया था, जैसे हम इसको हम और रोक उसको क्या कहते हैं रोका
सगाई
या रोक। अभी लड़की और लड़के से भेंट नहीं हुआ किंतु वहां पर जब लड़की के पास में खबर गई कि सगाई हो गई मेरी, बस संबंध आ गया उसके, और असल संबंध होगा तो शादी के बाद, सगाई के बाद में किसी कारण से शादी नहीं हुई तो हो सकता है कि दूसरे के साथ में भविष्य में शादी करे, किंतु विवाह हो जाने के बाद में आपकी आपको हम परिक्रमा करेंगे प्रदेखे, और गुरु वैष्णव ने उसका हाथ लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे दिया, बस पति पत्नी हो गए, जन्म के लिए वो संबंध भारतीय पद्धति में नहीं छूट, हो सकता है कि दूसरे में भी ये है संबंध,
ये विद्यावधु जीवन में आएगा
है,
ये वाला विवाह के बाद वाला संबंध विद्यावधु जीवन,
हाँ विद्यावधु जीवन में आएगा। तो ये संबंध ज्ञान की जरूरत है, किंतु देगा कौन, ये वो पिता माता होकर के कन्या का दान करने जैसे साधुओं की शादी कृष्ण के साथ में करा देता है।
वेरी गुड,
वितरण करने वाले भावावस्था भाव रुचि तरीका की नामाभाषा से की नाम शुद्ध नाम,
अरे भैया नाम तो सब समय शुद्ध ही है, समझो नाम कभी भी अशुद्ध नहीं है, हमारे अवस्था के वजह से उसे शुद्ध या अशुद्ध करते हैं, नाम का हमने आश्रय किया ये तो दर्पण मार्जन हो गया, भव महादावादी सब दुख दूर हो गए, तो इतने में शुद्ध नाम कहाँ से आए, नो शुद्ध नाम कमेंट्री ऑफ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इट विल बी मोर क्लियर, बट विदाउट भजन इट विल नॉट बी क्लियर, इट डिपेंड्स ऑन योर भजन
साधन भाव रूप चंद्रिका, तो चंद्रिका इज भाव
भाव बट नॉट यू शुड रीड देयर।
सो It wasn't going to be three hours. That is why, at the age of 24 years, he married with the help of one Brahman, engaged him with some girls. Girls and wife had not seen each other. But the parents of girls and the parents of wife, they have met together, they have seen the girls and for each other, and one mediator, he is called Prohit. And he was there who gave introduction of both families and both got engaged. In India it happens many places. They have not seen each other. So now both, girls and wife, they have understood. They have realized that they are now engaged to each other. Before this engagement, they were quite unaware of each other. There was no relationship. In the moment, they find that they are engaged, now they start thinking for each other. Their attachment for each other, it takes place and it starts increasing and increasing. So, in the spiritual realm, this engagement arrangement is done by Gurudev. He engages his living energy with Krishna. He makes a Samman Gyan. He gives Samman Gyan of Krishna to the living entity. And as the living entity gets engaged with Krishna, then they keep on thinking about Krishna. And then marriage ceremony takes place. The day marriage ceremony takes place, and girl and wife, they accept each other as husband and wife. At that time, this belief, this understanding, this realization that she is my wife goes so deep in heart that if she falls sick, this wife, this husband, who was sent to her a few months before, is going to spend any amount of money for her treatment. Just having this realization that she is my wife. Similarly, when Gurudev engages a living entity to Krishna and then he gets married to Krishna, he arranges a marriage to Krishna, such a deep relationship he establishes with Krishna at that time living entity, he surrenders his everything for the pleasure of Krishna. So this is Sambandha Gyan, first in the stage of Shri Gyanakshat Chandrika Vikranam. One gets engaged. Now the second stage of Vidya Vadu Jivanam. What is Vidya? Vidya is called?
Knowledge.
Vidya is knowledge. What is this Vidya? To know Krishna. The highest kind of Vidya is to know Krishna. And in fact, this Vidya, this knowledge is nothing but a potency of Radharani. So, Vidya is Radharani. And why? And who is Nandana of Radharani? The creator of Radharani is Krishna. So when we recite this Nam, by reciting this Nam, we get engaged with Krishna. Gurudev is clearly explaining that in Kali Yuga, this Harinam is the only process. There is no any other process. In other ages, like the Deva, Veda, Mokar, there were different processes, like meditation, like sacrifice, like worshipping. But in Kali Yuga, there is only one process. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. And in this Hare Ram, this Hare Krishna Mantra, this has been brought forward to us by Chaitanya Mahaprabhu. He mantra and he turned all our scriptures, all our Vedas, Upanishads, and from that journey, he brought forth, he gave us this essence, which is called Mahamantra. And when we recite this Mahamantra, this will give us Anand Sambhuti Vajna. Here, we realize our constitutional position. This Hari Vidya Mahamantra, it has 8 layers. And each layer when we chant, it gives its own potency and meaning. To live in halal. Halal pertains to halal. How come? Krishna is Hari. He enters the heart of every living entity. But the first Radha Rani, she enters the heart of Krishna also. So she is called Hara. And in the bonus, when we make in addressing it becomes Hare. So Hare Krishna. And here, Hare Krishna, Hare Krishna. And now Krishna is understood by the son of Dasharatha. No, here Rama is again Krishna. Krishna, who that the Raman is Radharani. So Radha Raman Ram, this is very important. If Ram is the son of Dasharatha and Krishna is Nandanandan, then while reciting Mahamantra, there will be Dasharatha story and there will be part. No, this whole Mahamantra is pertains to Radha and Krishna and their different pastimes. When we realize our own constitutional position, it is a theme of realization and not of imagination. So there is very clear saying, there is no need to imagine your constitutional position. This is God, our Krishna's head. The spiritual body, it has its own features and attributes. Like the physical body, it has eyes, ears, and lips, and different things. Similarly, the body of soul, our own spiritual body, it has all of it, eyes, nose, and everything. And it has its clear relationship with Krishna. And at that time, in our constitutional position, when we love Krishna, then we amour with the oil of self-awareness, Anand Sambhudevan.
एक बात जानना चाहिए, किसी किसी का कहना है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर तात्पर्य यह है, कुछ लोग का कहना है ब्रह्म ही सत्य है और जीव और कुछ नहीं ब्रह्म ही है, जब बद्ध है तो जीव अमुक्त हो जाएगा तो ये ब्रह्म हो जाएगा, जगत मिथ्या है, ऐसी भावना करते हैं, किंतु यह संपूर्ण उससे भ्रम है। ब्रह्म बद्ध कैसे होगा जो जीव बन गया? ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जीव ब्रह्म जो है वो सब समय ज्ञान ही है, ज्ञान से सब समय परिपूर्ण है, एक रस है, अव्यय है, वो माया निबद्ध कैसे होगा? ये झूठ बात है। बद्ध कौन हुआ? जीव है। जीव दो प्रकार के हैं, एक मुक्त जीव है जो भगवान की सब समय सेवा करते हैं, और कुछ बद्ध जीव होते हैं जो भगवान से विमुख रहने वाले माया के अंतर्ग में पड़े हुए। जीव कभी मुक्त होने पर भी ब्रह्म नहीं होगा, ये कदापि संभव नहीं है। जीव जी ही रहेगा, भगवान की सेवा करेगा, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति में भी जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है। अभी हम लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, अभी आप लोग अपना सामान दे करके जल्दी से प्रस्तुत हो जाइए, बहुत दूर दूर तक जाना है। Now our class is finished. If any doubt, we will try to.
That ends the class on the morning of the 18th of November 2001 in Govardhan.